नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत आज दरभंगा जाएंगे। 170 से अधिक योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राज्य मंत्रिमंडल ने 207 करोड़ रुपए की लागत से रक्सौल में एयरपोर्ट विकसित करने को मंजूरी दी। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की पहल को भी स्वीकृति। पीएमसीएच के एक छात्रावास में मेडिकल परीक्षा के ओएमआर शीट और एडमिट कार्ड बरामदगी मामले में पुलिस जांच शुरू। और मौसम विभाग ने कहा, अगले दो दिनों में भीषण ठंड से राहत की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा जिले में 170 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में दोनार में आरओबी का शिलान्यास और नए पुलिस भवन का उद्घाटन शामिल है। मुख्यमंत्री श्री कुमार जीविका दीदी और स्थानीय लोगों के साथ विकास के मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले सिंहवारा प्रखंड के भराठी में 35 करोड़ से अधिक की लागत से बने बृहद आश्रय गृह का लोकार्पण करेंगे। फिर सिमरी में नवनिर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भवन का लोकार्पण करने के पश्चात सिमरी उच्च विद्यालय प्रांगण में जिले के अनेक योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन रिमोट के माध्यम से करेंगे। यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री दरभंगा के ऐतिहासिक हराही तालाब का भी निरीक्षण करेंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
राज्य मंत्रिमंडल ने रक्सौल एयरपोर्ट के विकास की योजनाओं को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके निर्माण के लिए 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसके निर्माण पर 207 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 90 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। डॉ सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ना की खरीद मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।
गन्ना किसान का पेराई मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि होनी थी, पहले 10 हुई थी इसी सीजन में, उसके अतिरिक्त 10 रुपए सरकार ने भी घोषित की, तो इस पूरे वृद्धि में 70 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे और सभी गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से 10 रुपए और बाकी जो मिल का वैसे भी दर है 10 रुपए बढ़ गया था तो 20 रुपए वृद्धि हुई है।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि वैशाली और सीतामढ़ी जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
वैशाली जिला में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके तहत 1,243.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके लिए 1,01,92,15,154 रुपए व्यय होंगे। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के मद्देनजर सीतामढ़ी जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा जिसमें 504.52 एकड़ अधिग्रहण होगा। इसमें 202.98 करोड़ 77,06,366 रुपीज व्यय होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। श्री मोदी ने यह विचार प्रमुख उद्यमी निखिल कामत को दिए एक साक्षात्कार में व्यक्त किए हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया, यूपीआई और तकनीक के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र और इसके सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हैं।
आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता हूं। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता हूं। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लगेगा वो था, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ।
वर्तमान चुनौतियों के बारे में पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारत पर इसलिए भरोसा करता है कि उसका दृष्टिकोण निष्पक्ष है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के दौरान भारत ने बार बार यह कहा है कि वह शांति के पक्ष में है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन नवंबर में छह महीने के उच्चतम स्तर 5.2% पर पहुंच गया, जो अक्टूबर में 3.5% था। एक रिपोर्ट।
आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के तीन प्रमुख घटकों में से विनिर्माण उत्पादन नवंबर में 5.8% बढ़ गया, जबकि बिजली उत्पादन में 4.4% और खनन गतिविधियों में 1.9% की वृद्धि हुई। नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024 में उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार IIP की वृद्धि दर प्राथमिक वस्तुओं में 2.7%, पूंजीगत वस्तुओं में 9%, मध्यवर्ती वस्तुओं में 5%, बुनियादी ढांचे या निर्माण वस्तुओं में 10% और उपभोक्ता में 13.1% रही। टिकाऊ और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 0.6% वृद्धि हुई। आयुषी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
गृह मंत्री अमित शाह आज मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह मादक पदार्थ निपटान पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में HMPV वायरस की जांच शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पटना स्थित IGIMS में इस बीमारी के लक्षण वाले 3 मरीजों के सैंपल की जांच की गई। इनमें से किसी भी मरीज में HMPV की पुष्टि नहीं हुई है। मंत्री ने कहा कि सोमवार से राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट RMRI में भी HMPV की जांच शुरू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय करों में बिहार को मिलने वाली हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है। उन्होंने पटना में कहा कि केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को 2024 में 8,960 करोड़ रूपये मिले थे। केंद्र सरकार ने इस राशि को 2025 में बढ़ाकर 17,403 करोड़ रूपये कर दिया है। श्री चौधरी ने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को अधिकतम राशि उपलब्ध कराई गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि में से प्रदेश में आधारभूत संरचना के निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में इस साल बिजली का कोटा 1,500 मेगावाट बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि 2025 में राज्य की कई परियोजनाओं से बिजली उत्पादित होने लगेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बक्सर के चौसा में 660 मेगावाट क्षमता की बिजली की 2 इकाइयों का निर्माण हो रहा है, जबकि बाढ़ में 3री इकाई का निर्माण अंतिम चरण में है। इन बिजली घरों से मिलने वाली बिजली से बिहार का कोटा बढ़ जाएगा। इससे बिहार वासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। पटना स्थित PMCS से PG पास आउट डॉक्टर अजय कुमार सिंह के कमरे में आगलगी की घटना की जांच के क्रम में पुलिस ने तलाशी ली है। इस दौरान कमरे से जले नोट और NBI PG के अलग अलग वर्षों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। CTSP सेंट्रल स्वीटी सहरावत ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।
चाणक्य जो हॉस्टल है PMCH का, उसमें जाकर आग को बुझाया गया। उसके बाद जो है वहां के जो वार्डन है, उन्होंने रूम वगैरह जब चेक किया गया तो उनको कुछ जो है संदिग्ध चीजें वहां पे मिली, जिसकी सूचना उन्होंने पीरबौर थाना को दी। पीरबौर थाना की टीम और साथ में जो PMCH के प्रिंसिपल है, वार्डन है, उन सबके द्वारा जो है संयुक्त रूप से रूम को चेक किया गया, जिसमें वहां से एक शराब की बोतल भी मिली, जिसमें जो है पीरबौर थाना में कांड दर्ज किया जा रहा है। उसमें जले हुए नोट भी मिले जो करीब 2,75,000 है। ये एडमिट कार्ड्स हैं, कुछ जली हुई OMR शीट्स हैं।
ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में 13,000 से अधिक टोले और बसावट सड़क विहीन हैं। ऐसी बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने पटना में पत्रकारों से कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 नए पुल का निर्माण करवाया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि रेलवे की तर्ज पर प्रदेश में 1,000 से अधिक पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलों के डीपीआर निर्माण में अब अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब जो पुल का हम लोग डीपीआर बना रहे हैं उसको ऐप के माध्यम से बनाया जा रहा है, यानी उसमें ये संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी कि बिना वहाँ का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किए हुए और सॉयल इन्वेस्टिगेशन किए हुए कोई भी कंसल्टेंट अपने घर में बैठ के उसका डीपीआर बना दे। कि जहाँ कहीं भी नया पुल बनेगा उसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जहाँ कहीं भी एग्जिस्टिंग पुल है, खासतौर पर रेलवे के जो पुल है क्योंकि वो सबसे मजबूत होते हैं रेलवे के पुल, उन पुलों को देख के और उनका जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए नए पुलों का फाउंडेशन प्रस्तावित किया।
पछुआ हवा का प्रभाव कम होने के साथ ही मौसम के रुख में परिवर्तन आया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान ठंड में और कमी आएगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा।
अगले 2 दिनों के दौरान मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा। तत्पश्चात तीसरे दिन प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों विशेषकर बक्सर, कैमूर, रोहतास आदि में 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है।
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज से परेड का पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है जो 24 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इस परीक्षा के माध्यम से 306 डीएलएड कॉलेज की 30,750 सीटों पर नामांकन होगा। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में 23 जनवरी से 26 जनवरी तक रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे चरण के तहत बिहार का मुकाबला उत्तर प्रदेश से होगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी रिंकू सिंह और नीतीश राणा यूपी टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न राष्ट्रीय रैंकिंग पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण 7 रजत समेत कुल 11 पदक जीते हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले की पहली सूची जारी कर दी है। पहले चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने कैबिनेट से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, प्रगति यात्रा के 21 वायदों पर मुहर। दैनिक जागरण लिखता है, राजद के विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी का छापा। दैनिक भास्कर ने शिक्षकों के तबादले से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, शिक्षकों का तबादला शुरू, 35 कैंसर पीड़ित को ऐच्छिक स्थान पर पोस्टिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत आज दरभंगा जाएंगे। 170 से अधिक योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राज्य मंत्रिमंडल ने 207 करोड़ रुपए की लागत से रक्सौल में एयरपोर्ट विकसित करने को मंजूरी दी। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की पहल को भी स्वीकृति। पीएमसीएच के एक छात्रावास में मेडिकल परीक्षा के ओएमआर शीट और एडमिट कार्ड बरामदगी मामले में पुलिस जांच शुरू। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों में भीषण ठंड से राहत की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।